Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
आप जब मंगलाचरण करते हैं ना तो आपके मन में एकाग्रता आ जाती है. आपको भी ध्यान देना, आप आकर के इसी प्रवचन में बैठ जाना और आप शांति पाठ करने के बाद बैठना. आपके मन में अलग महसूस होगा, भाव महसूस होगा. आप आंख बंद कर आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और उसके बाद कोई काम कर रहे हैं तो आप अनुभव करेंगे आपके मन में एकाग्रता आ गई है. आपने आंख बंद कर परमात्मा को याद किया, आपके मन की जो शक्तियां हैं वो खींचकर एक जगह पर आ चुकी होगी. आप जब मंगलाचरण करते हैं ना तो आपके मन में पवित्रता, आपके मन में इंद्रिय संयम, आपके मन में श्रद्धा आस्तिकता का उदय हो जाता है और फिर आपकी श्रम शक्ति और प्रखर हो जाती है. यह मंगलाचरण हमारी दोनों शक्तियों का निर्माण करता है, एकाग्रता का भी और परिश्रम को भी. परिश्रम आप साधना करते हैं, आप जब ध्यान करते हैं तो आपके भीतर श्रम करने की शक्ति और बढ़ जाती है. और इसीलिए शास्त्र ने कहा कि आप मंगलाचरण करो. हाँ, बस आप समझ गए. आप जब भी भगवान का नाम स्मरण करके आगे बढ़ते हैं तो आपके सफलता के भाव बढ़ जाते हैं. अब यहां पर मंगलाचरण किया, कठोपनिषद के प्रारंभ में भी मंगलाचरण है. आप श्रवण करते हैं, मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है. एक होता है नमस्कारात्मक मंगलाचरण, दूसरा होता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण और तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण. नमस्कारात्मक मंगलाचरण का मतलब होता है आप परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं, आप हाथ जोड़ रहे हैं, नमो नमः. आप कहते ना सद्गुरवे नमः, जगद्गुरवे नमः, शिवाय नमः, रामाय नमः, हनुमते नमः. आप नमस्कार करते हैं ना, ये नमस्कार मंगलाचरण है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है. और यहां नमस्कार का अर्थ केवल सिर झुकाना नहीं है. आप श्रवण करते ना, पूज्य महाराज श्री कहते हैं न मे इति नमः, ये मेरा नहीं है. आप झुका लेते हैं सिर, आप अपने हाथ जोड़ते हैं और आप क्या करते हैं कि सामने वाले की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं. नब्बे न्याय में इसका बड़ा सुंदर अर्थ किया है, स्वापकर्ष बोधानुकूल व्यापारो नमस्कारार्थ. स्वापकर्ष पर उत्कर्ष ज्ञापनानुकूल व्यापार. आप जब किसी के चरण छूते हैं, आप किसी को प्रणाम करते हैं ना, तो सामने वाली की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं. आप कहना चाहते हैं, अपनी क्रिया के द्वारा कहना चाहते हैं कि आप हमसे श्रेष्ठ हैं और हम छोटे. सामने वाले की श्रेष्ठता और अपनी कनिष्ठता को स्वीकार करने के लिए जो आपकी क्रिया है उसी का नाम नमः है, उसी का नाम नमस्कार है. और ये विनम्रता का प्रतीक है. आप नमस्कार करते हैं, नमस्कार कोई सामान्य चीज नहीं. इसलिए भगवान ने कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः. ये मंगलाचरण है. भगवान ने कहा कि आप अपने गुरु के सामने जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप किसी महात्मा के पास जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले नमन है, सबसे पहले प्रणाम है और वो अहंकार का विसर्जन है. आप सिर झुकाते माने अपने अहम को विसर्जित करते हैं, वहां व्यक्तित्व का विसर्जन है. ये विनम्रता सामने वाले की स्वीकृति है, विनम्रता सामने वाले के आदेशों की स्वीकृति है, उपदेशों की स्वीकृति है, उसके आचरण की स्वीकृति है. आप प्रणाम कर इसका अर्थ है आप उनके उपदेशों को स्वीकार करें. यह श्रद्धा, ये श्रद्धा है, नमन श्रद्धा है, नमन विश्वास है, नमन आपकी विनम्रता है. और जो विनम्र होता है ना वही नारायण दूसरे के उपदेशों को ग्रहण करने में समर्थ होता है, अभिमानी आदमी नहीं। विनम्रता जैसे स्वर्णकार अलंकार बनाता है तो उसके पहले सोने को क्या करता है, पिघला देता है और उसके बाद मनचाहे आकार देता है, फिर मनचाहे आकार। आप लोहे को आप पिघला दीजिए उसके बाद मनचाहे आकार दे दीजिए, और यदि पिघला हुआ लोहा नहीं तो आपको ठोकना पड़ेगा, उसको पीटना पड़ेगा और उसके बाद भी वो आकार बनेगा कि नहीं आपको भरोसा नहीं है। ऐसे जो विनम्र व्यक्ति होता है ना गुरु के पास जाता है तो गुरु के आचरण में ढल जाता है, गुरु के उपदेशों में ढल जाता है, गुरु के उपदेश उसके जीवन में चरितार्थ होने लगते हैं, उसको ज्यादा श्रम करना नहीं पड़ता है। ये मंगलाचरण है, ये श्रेष्ठ साधक के जीवन का पहला भाव है, ये साधक के जीवन का पहला भाव, ये नमन, ये मंगलाचरण पहला भाव। इसलिए आप गुरु के पास जाते हैं तो सबसे पहले आप सत्संग में आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, नमन करते, ये मंगलाचरण या अध्यात्म का पहला भाव है। और दूसरा है वस्तु निर्देशात्मक मंगल, या आप समझ लीजिए आशीर्वादात्मक मंगल। आप क्रम से इसको समझेंगे, आप गुरु के चरणों में झुके, आपने नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण गुरु ने किया, या आशीर्वादात्मक मंगलाचरण न शिष्य नहीं करता है, गुरु करता है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण शिष्य करता है और आशीर्वाद कौन देता है? जो आशीर्वाद देना है ना वो भी मंगलमय है, ये भी मंगलाचरण है। और यह आशीर्वाद दो प्रकार से है, समर्थ गुरु हो तो गुरु आपको साक्षात आपको आशीर्वाद देगा, आप नमन किए और आपको गुरु की शक्ति मिलेगी। लेकिन गुरु मंगलाचरण ऐसा भी करते हैं कि आपका नमस्कार परमात्मा तक पहुंचा देते हैं, आपकी भावना भगवान तक पहुंचा देते हैं, गुरु माध्यम बन जाते हैं, गुरु उपकरण बन जाते हैं, गुरु साधन बन जाते हैं। सर्वेशम गुरु हूं काले न अनवच्छेदा, परमात्मा सबका गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसलिए गुरु को जब आप प्रणाम करते हैं तो गुरु के भीतर जो गुरुत्व है वो परमात्मा का है, आप ध्यान देना। गुरु के भीतर के गुरुत्व को आप प्रणाम करते हैं कि आप गुरु को प्रणाम करते हैं? आप प्रणाम व्यक्ति से करते हैं कि अव्यक्त को करते हैं? आप गुरु को प्रणाम नहीं करते, आप गुरु के भीतर जो गुरुत्व है और वो जो गुरुत्व है वही तो परमात्मा है। भैया गुरु तो परमा वही है। परम पूज्य महाराज श्री को किसी ने पूछा कि गुरु का मतलब क्या है, आप सुनते ना जो गुर्राए हो गुरु तो गुर्राने वाला कौन है भैया? एक ही और अरे जीव में क्या सामर्थ्य है गुर्राने का? इसमें जो गुरुत्व है ना ये गुरुत्व परमात्मा का है। इसलिए सूत्र है सर्वेशम गुरु, वो सबका गुरु है। और जब आप साधना करते तो गुरुत्व प्रकट होता है। आप साधना कर रहे हैं, आप जप कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं, आप सत्संग कर रहे हैं, तो आप अपने भीतर के गुरुत्व को प्रकट करने के लिए कर रहे हैं। आप सत्संग करते करते गुरु बन जाते कि नहीं? चेला ही सेवा करते करते गुरु बन जाता है, मतलब उस सेवा ने उसको गुरु बना दिया, उसके भीतर के गुरुत्व को प्रकट कर दिया। आपका सत्संग आपकी साधना आपके भीतर के गुरुत्व को प्रकट करने के लिए आप आए हैं। आप चेला बनने के लिए आए हैं कि आप गुरु बनने के लिए आए? तो हैं चेला बनने के लिए, क्योंकि चेला बने बिना गुरु बनने का कोई उपाय नहीं है। आकांक्षा तो गुरु बनने की है। आप ईमानदारी से आप इसका उत्तर देना, आप गुरु बनना चाहते कि चेला? आप बनना चाहते हैं, आप गुरु बनना चाहते हैं, आप अपने भीतर के गुरुत्व को प्रकट करना चाहते हैं। आप हल्का बनने के लिए आते कि भारी? हल्का लेकिन हल्का बने बिना भारी बनने का कोई उपाय नहीं। शिष्य बने बिना गुरु बनने का कोई उपाय नहीं है, माध्यम है, शिष्य बनना माध्यम है। आप शिष्य बन जाते हैं, आप साधना करते हैं, सत्संग करते हैं और धीरे धीरे अपने भीतर के गुरुत्व को आप प्रकट करते हैं। तो गुरु क्या करते हैं फिर? गुरु देखो, आप जब प्रणाम करते हैं ना, तो गुरु अपने द्वारा आपके प्रणाम को परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। ये आशीर्वाद जो है ना, ये गुरु देता है, माने आपके प्रणाम को भगवान तक पहुंचा देता है, आपकी भावना भगवान तक पहुंचा देता है। आशीर्वाद गुरु कर देता है कि नहीं? आशीष माने आपकी भावना भगवान तक पहुंचाने का जो कार्य गुरु करते हैं ना, उसको कहते हैं आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। और तीसरा जो मंगलाचरण है अब शुरू होता है, पहले आपने नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया, आपने गुरु को प्रणाम किया, गुरु ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण हुआ और प्रवचन शुरू हो गया तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। परमात्मा के सगुण अथवा निर्गुण स्वरूप का प्रतिपादन करना ही वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। आपने नमस्कार किया, गुरु ने आशीर्वाद दिया और प्रवचन प्रारंभ करके परमात्मा के सगुण स्वरूप का वर्णन करने लगे, भगवान राम ऐसे, भगवान कृष्ण ऐसे, भगवान विष्णु ऐसे, तो मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण अथवा परमात्मा के निर्गुण स्वरूप का, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंशन्ति तत् ब्रह्म अभिजिज्ञासस्व श्वेतकेतो। अब वो निर्गुण परमात्मा का वर्णन करने लगे, तो क्या हुआ? ये सब वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, ये क्रम है, ये तीनों एक साथ होता है। ये तीनों जो मंगलाचरण है अलग अलग नहीं है, आप ये मत सोचना कि अलग अलग है, ये क्रम है। आप जैसे ही नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हैं तो उसी समय आपके दोनों बाकी के मंगलाचरण अपने आप हो जाते हैं। आपको करना केवल एक मंगलाचरण है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण, और बाकी के दो अपने आप शुरू हो जाते हैं। गुरु का आशीर्वाद मिलता है और गुरु आपको फिर कोई ना कोई बात बताना शुरू कर देते हैं, आपके जीवन में मंगलाचरण हो जाता है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। और यही मंगलाचरण आपके जीवन में सफलता को पैदा करता है। इसलिए श्रुति कहती है समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। आपको अपनी कामना की पूर्ति करना है या निवृत्ति करना है या कार्य को पूरा करना है तो आप मंगलाचरण करो। और ये मंगलाचरण ना तीन बार किया जाता है, एक बार नहीं, आदौ मध्य अंतेच। आप सबसे पहले, और देखो बीच बीच में भी धन्यवाद देते हैं कि नहीं? जब आप बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात, कभी कभी सिर झुकाता है आदमी, जब आप बहुत अच्छी बात श्रवण करते हैं, मन गदगद हो जाता है, तो आप थोड़ा सा धन्य, ये बीच वाला मंगलाचरण। और जब प्रवचन समाप्त हो जाता है, उपदेश समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद भी आप नमस्कार करते हैं, इसलिए कार्य के प्रारंभ में, कार्य के मध्य में और कार्य के अंत में ये मंगलाचरण किया जाता है। ये मंगल, ये हमारे जीवन का सर्वोच्च भाव और अध्यात्म का प्रथम सूत्र है। ये अध्यात्म का प्रारंभ ही इसी मंगलाचरण से होता है। आप अपने बच्चों को मंदिर में ले जाते था तो आप बच्चों को कहां से शुरुआत करते हो? आपके बच्चों में अध्यात्म का प्रारंभ नमन से तो होता है, सबसे पहले आप मंदिर में भी जाते हैं तो बच्चे से प्रार्थना पहले कराते हैं कि हाथ पहले जुड़वाते हैं? शुरुआत ही है, यह हाथ जोड़ने से शुरुआत है। और आप ध्यान देना, हाथ जोड़ने से शुरुआत है और यह हाथ जोड़ना क्या है, ये बहुत ऊंची चीज है भैया, हाथ पैर जोड़ना हम लोग बोलते हैं ये हाथ जोड़ना कोई सामान्य चीज नहीं है, यह हाथ जोड़ना आपके जीवन को परम विनम्र बनाने की कला है, क्योंकि अध्यात्म विनम्रता के बिना संभव नहीं है। ये मंगलाचरण का सर्वोच्च भाव ये भी है कि आपके अंतकरण की कठिनता, आपके अंतकरण के अभिमान, अहंकार के भाव को गला देना, विसर्जित कर और जो व्यक्ति झुकना, प्रणाम करना, नमन करना जानता है ना, उसके जीवन में धीरे धीरे विनम्रता आ जाती है, उसका हृदय कोमल हो जाता है, उसके अंदर दया, उसके अंदर सहिष्णुता, अपनत्व, ये सारी चीजें समाविष्ट होने लगती हैं और वो व्यक्ति दिव्य आध्यात्मिक बन जाता है, वो साधु बन जाता है। इसलिए नमन करना, नमस्कार करना हमारी जीवन का सर्वोच्च और प्रथम भाव है। इसलिए इससे आप कंजूसी मत कीजिएगा, नमस्कार करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। कई बार तो लोग नमस्कार के चक्कर में पेट को ही हाथ लगा देते हैं। कई बार नमस्कार करने के लिए आते हैं, घुटने को ही हाथ लगा देते हैं, क्योंकि झुकना नहीं जान रहे हैं, वो औपचारिकता है। आप जब नमस्कार करते हैं तो ईमानदारी से आप दूसरे को दे रहे हैं कि आप ले रहे हैं? आप नमस्कार करके दूसरे के ऊपर उपकार कर रहे हैं कि आप अपने ऊपर उपकार कर रहे हैं? आप नमस्कार करके दूसरे के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं। आपने सामने वाले को नमस्कार किया, सामने वाले को क्या मिला? अरे उसको मिला कि नहीं मिला, लेकिन करने वाले को मिला। आप झुक गए। अभिवादनशीलस्य तस्य चत्वारी वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आप जब अभिवादन करते हैं ना, आप प्रणाम जब करते हैं, तो आपके जीवन में चार चीजें बढ़ती हैं, आपकी आयु बढ़ती है। बात तो सही है, आपसे बड़ा आदमी आपके सामने आया है और आप बैठे बैठे हैं, आप उनको नमन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी अंदर की अंतरात्मा आपको ही खाती है। आपको भी लगता है यार उठ नहीं पाए, कछोड़ती है कि नहीं, और आपने प्रणाम किया, आपके प्राण ऊर्ध्वगमित हो जाते हैं, आप प्रसन्नता और आह्लाद से भर जाते हैं, क्योंकि आपने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। सामने वाले ने आपको आशीर्वाद दिया, गदगद हो गया, वाह वाह, आपको सामने वाले को अपना बना लिया है, आपकी ताकत अब दुगनी हो गई है, आप अकेले नहीं है, आप अपने गुरु को प्रणाम किए, आप साधु को प्रणाम किए, अपने से बड़े व्यक्ति को प्रणाम किए, अब आप अकेले नहीं रहे, आपकी ताकत दुगनी हो गई है। दुगनी क्या, ज्यादा, क्योंकि भैया हमसे तो उतना नहीं है। हम तो छोटे थे, सामने वाला बड़ा है, और बड़े में हम मिला, अपने आप को मिला दिए, तो हमारी ताकत कितनी बड़ी हो गई। तो प्रणाम करना, एक महात्मा कहते थे कि अरे ये प्रणाम करना बोले सबसे बड़ी पॉलिसी है, ऐसा बोलते थे। जब मैं ऋषिकेश में था तो एक महात्मा जी थे, उन्होंने दो चीजें मुझे आज भी याद है। एक बार मैं बड़ा हताश हो गया, उदास हो गया, और पढ़ने के मामले में मैं बड़ा ये था कि पढ़ना मेरे जीवन का उद्देश्य था। 24 घंटे मैं अपनी पुस्तक अपने सिरहाने पर लेकर के सोता था, जो भी पढ़ता था मैं उसको याद करके पढ़ता था। एक बार हताश हो गया, उन्होंने क्या पढ़ना लिखना है, चलो भिक्षा मांगने के लिए गए नानकपुर आश्रम, और वहां भिक्षा मांग के खाते थे मधुकरी, सफेद कपड़े में था, सबसे लास्ट में भिक्षा लेना पड़ता था, खड़ा था मैं, और डर भी था कि पता नहीं भिक्षा देगा भी नहीं देगा। तो एक करीब 6-6.5 फुट ऊंचे महात्मा, करीब 70-80 साल की उम्र, वे डंडा इतना बड़ा लेके खड़े थे, वो ऐसे लगाए डंडा, विरक्त महात्मा थे। मैं ऐसे खड़ा था वहां, और वो आए नजदीक आने के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि ब्रह्मचारी तुम क्या करते हो? मैं तो ऐसे उदास तो था, मैंने कहा महाराज कुछ नहीं करता हूं, बस अन्न क्षेत्र में रोटी खाता हूं, कमरे में जाके सो जाता हूं। उन्होंने जो दो बातें बोली मुझे बड़ा अच्छा लगा। अरे बोले क्या करता है महात्मा? अरे बोले तुम्हारे में इतनी ताकत है कि जहां तुम पैर रखोगे वहीं पानी निकल आएगा। बोले तुम ऐसा अपने आप को व्यर्थ गवाओ मत, बड़ी ताकत है तुम्हारे में। जब उन्होंने चीज बोली ना, तो मुझे ऐसा लगने लगा सचमुच कि मैं यहां पैर रखूंगा तो पानी निकलेगा, ऐसा मुझे भाव पैदा हुआ। और दूसरा उन्होंने कहा कि तुमको एक कला बता देते हैं, किसी भी आश्रम में महात्माओं के पास रहना हो तो। मैंने कहा क्या महाराज? बोले जहां भी कहीं रहो सबको प्रणाम करो। बोले ये प्रणाम करना सबसे बड़ी पॉलिसी है मेरी। बोले आप जिस आश्रम में रहोगे, आश्रम के लोग यदि आपसे खुश रहे, ऐसा आप चाहते हैं, तो आप क्या करो? प्रणाम भैया, प्रणाम। जी स्वामी जी, वो भी मना रहे हैं। साधु को क्या चाहिए? आप साधु को खुश करना चाहते हैं, साधु को, हाँ साधु को, मैं साधु शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। आपको साधु को खुश करना है तो आपको क्या करना चाहिए? अरे कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा झुक के प्रणाम करो, साधु खुश। आप उसको कुछ दो कि ना दो, फूल की माला चढ़ाओ कि ना चढ़ाओ, आप उसको फल प्रदान करो कि ना करो, आप प्रणाम करो, वो खुश। और उसके बाद सचमुच ऐसे ही हुआ, मैं जिस आश्रम में रहता था ना, सबको प्रणाम करता था मैं, जितने 6 महीने का भी बड़ा महात्मा मेरे से हो उसको भी मैं प्रणाम करता था। और उसका परिणाम क्या हुआ मालूम है? उस जहां भी मैं रहता था तो लोग बोलते थे बड़ा विनम्र है ये ब्रह्मचारी लेकिन उस समय भी मैं सोचता था कि वो महात्मा जी ने बोला था सबसे बड़ी पॉलिसी है लेकिन आप जब उस चीज को करते जाते हैं ना, तो सचमुच आपका अंतःकरण निर्मल होता जाता है और वो आपका भाव फिर वास्तविकता में बदल जाता है। आपको भले ही आप में श्रद्धा नहीं है लेकिन आप करते जाइए, आप करते जाइए। आप में श्रद्धा नहीं है, नमन करने की इच्छा नहीं है लेकिन आप कीजिए, आप बलात् कीजिए, ये हठयोग है। आपका जप करने में मन लगता है क्या? लेकिन जबरदस्ती लगाना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप लग जाता है, फिर वो साधना बन जाती है, आपकी आराधना बन जाती है। इसलिए आप नमन करते जाइए, जो भी मिले अपने से बड़ा उसका अभिवादन करते चलिए और वो धीरे धीरे आपका स्वभाव बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। जो भी आएगा तो आप झुक लेंगे, फिर आप जो भी मिलेगा तो आप झुक लेंगे क्योंकि आपका स्वभाव बन गया। इसलिए हमारे जीवन में ये नमन सर्वोत्कृष्ट साधना है और ये साधना सामान्य मत समझ लीजिए, इसको टालिए मत। इसलिए हमारे ग्रंथों के प्रारंभ में हर जगह पर, हर जगह पर आपको मिलेगा मंगलाचरण। आप कोई भी ग्रंथ उठा के देखिए, सबसे पहले क्या है? मंगलाचरण। और यहां कठोपनिषद में सबसे पहले आप जो श्लोक बोलते हैं ना, ओम सहना भवतु, ये आपके कठोपनिषद का मंगलाचरण है, आपके कठोपनिषद का शांति मंत्र है। आप 10 शांति मंत्र बोलते हैं, आप 11 क्यों नहीं बोलते? आप 9 क्यों नहीं बोलते? आपके 10 उपनिषद हैं और 10 उपनिषद के एक एक मंत्र हैं। आप 10 मंत्र बोलते हैं, शांति के मंत्र बोलते हैं, वो 10 शांति के मंत्र आपके 10 उपनिषदों से लिए हैं, एक एक एक। हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी महाराज, ये आपकी छोटी सी 10 शांति मंत्र की पुस्तक है ना, ये सारी चीजें हमने वहीं से सीखी हैं। हमको गायत्री मंत्र की दीक्षा कैलाश के मंडलेश्वर जी महाराज ने दी थी, जो हम तो 13 साल की उम्र में घर छोड़े हैं, बहुत बच्चे थे घर से भागे। फिर उन्होंने पूछा, वो बड़ी लंबी कथा है संक्षेप में सुना रहे हैं, छोटा सा रूप देखा उन्होंने और भी बोले, ब्रह्मचारी क्या करते हो? मैंने कहा महाराज पढ़ता हूं। कहां पढ़ते हो? मैंने कहा कैलाश आश्रम में पढ़ता हूं। बोले तुम्हारी दीक्षा उपनयन संस्कार वगैरह हुआ? सब कुछ पूछा उन्होंने। मैंने कहा नहीं महाराज। तो ये कैसे पहना? मैंने कहा ऐसे घर में पहना दिया लोग हमने कहा घर में ऐसे पहना दिया है लेकिन अभी संस्कार नहीं हुआ है। वो कहा गया कि संस्कार आगे करेंगे करेंगे, लेकिन टलता गया। तो बोले नहीं, तुम्हारा संस्कार होगा। तो उन्होंने स्वयं फिर स्वयं यज्ञ में बैठाया, वो कराते हैं ना वो कैलाश आश्रम। ये 10 शांति मंत्र वहां कैलाश आश्रम में हम प्रतिदिन पढ़ते थे। जैसे सुबह पहुंचते हम लोग तो वहां शांति मंत्र का पाठ होता है सुबह सुबह, प्रातः सुबह, और वहां फिर नारायण वो सारा पाठ करते करते। कैलाश आश्रम को सामान्य संस्था नहीं थी, रावी भी हैं वहां के छात्र, आपको हर जगह पर मिलेंगे। एक एक मंत्र एक एक उपनिषदों से लिए और वो 10 मंत्र बना दे और आप उसका पाठ करते हैं। ये मंगलाचरण है, उसमें भगवान से प्रार्थना है। आप इसको आपको मैं बताऊंगा कल, ओम सहना भवतु का अर्थ क्या है, इसमें भगवान से प्रार्थना है, प्रत्येक मंत्रों में प्रार्थना है। और प्रार्थना के पहले आप एक शब्द बोलते हैं जो आपके संपूर्ण मंत्रों का मूल मंत्र बीज मंत्र है और वो है ओम। आप कोई भी मंत्र बोलते तो आप उसके पहले क्या लगाते हैं? लेकिन आपको मालूम है ओम का अर्थ क्या है? ओम बहुत गहरा, बहुत ही गहरा हमारा मंत्र है, बहुत गहरा। और जितने भी दुनिया के मंत्र है ना, संपूर्ण मंत्रों का जो आदि मंत्र है वो कौन है? ओम। ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वावेतो ब्रह्मण पुरा कंठम भीत्वा विनिर्यातो तस्मात मांगलिका उभौ। भगवान का सबसे पहला नाम क्या है? भगवान का सबसे पहला, ब्रह्मा जी ने सबसे पहली साधना की भगवान की, और उस साधना का मंत्र क्या था? जब ब्रह्मा जी पैदा हुए और भगवान ने आदेश दिया कि तुम तप करो, भगवान ने पहले कहा कि सृष्टि का निर्माण करो, उन्होंने कहा ताकत नहीं, कमजोर आदमी क्या करूं मैं, भगवान ने कहा तप करो, तप, उन्होंने कहा तप करे तो तप के लिए कोई माध्यम भी तो होना चाहिए, तुम्हारा भगवान ने बोला नहीं, भगवान ने केवल आशीर्वाद दिया, अनुग्रह किया और ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रणव की ध्वनि प्रकट हो गई। ओंकारश्च अथ शब्दश्च कंठम भीत्वा विनिर्यातो, कंठ का छेदन करके वह अपने आप, वह कंठम भीत्वा का अर्थ क्या है, वहां मालूम नहीं पड़ा, वहां तो ब्रह्मा जी को ये भी नहीं मालूम पड़ा, जबरदस्ती हठात बलात् कंठ से ओम की ध्वनि निकली, वहां कोई विचार नहीं था, वहां कोई सोच नहीं था, कोई कल्पना नहीं, भगवत प्रेरणा से ब्रह्मा जी के कंठ से ओंकार की ध्वनि निकली सबसे पहले, और फिर उसी ओंकार की साधना ब्रह्मा जी ने की और उसी का सामर्थ्य उनमें आपको दिखाई देता है। तो आपको कल बताऊंगा कि ओंकार क्या चीज है, ओम का अर्थ क्या है, और वो हमारे जीवन का बीज मंत्र कैसे हैं, और ओंकार के बिना हमारे कोई भी मंत्र संभव नहीं है, कैसे नहीं, मैं आपको कल बताऊंगा ओम का अर्थ और ओम सहनावतु, ये जो मंगलाचरण है कठोपनिषद का, ये कितना सुंदर और कितना ऊंचा और कितनी ऊंची प्रार्थना है, हम कल सुनेंगे। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।